ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पा कमल दहाल प्रचंड को किया प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त। प्रधानमंत्री प्रचंड को मिला 159 सांसदों का समर्थन। शीतलहर और बर्फबारी से बचने का सभी से स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने किया आग्रह। काठमांडू के विभिन्न स्थानों में 10 उद्यान निर्माण करने की काठमांडू उपत्यका विकास प्राधिकरण की तैयारी। और उत्तरी अमेरिका में आर्कटिक तूफान की चपेट में आने से हुई कम से कम 20 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पा कमल दहाल प्रचंड प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल के संविधान की धारा 76 की उपधारा 2 के मुताबिक माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड को नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास ने दी। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड नेकपा एमाले, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी और 3 स्वतंत्र सांसदों के समर्थन से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। नवनियुक्त प्रधानमंत्री प्रचंड ने इससे पूर्व 2065 श्रावण से 2066 वैशाख 21 गते तक और 73 श्रावण 19 गते से 74 जेठ 23 गते तक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता सागर आचार्य ने बताया कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दहाल प्रचंड को कल शाम 4 बजे राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। इससे पहले माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पा कमल दहाल प्रचंड आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पहुंचे और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी समक्ष प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉ सीके राउत और अन्य नेताओं ने राष्ट्रपति के सामने नई सरकार के लिए अपना दावा पेश किया था। इससे पहले बालकोट में नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के निवास पर हुई चर्चा में अध्यक्ष प्रचंड को कुल 166 सांसदों का समर्थन मिला, जिनमें नेकपा एमाले के 78 सांसद, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 20 सांसद, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 14, जनता समाजवादी पार्टी के 12, जनमत पार्टी के 6, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के 4 सांसद शामिल थे। राष्ट्रपति समक्ष नई सरकार के लिए दावा पेश करने के दौरान स्वतंत्र सांसदों डॉ अमरेश कुमार सिंह, प्रभु साह और किरण कुमार साह ने भी माओवादी अध्यक्ष प्रचंड को समर्थन दिया, जिसके बाद उनके पक्ष में कुल 169 सांसदों का समर्थन जुट पाया। इसी तरह आज दोपहर तक नई सरकार गठन के लिए मौजूदा सत्ता गठबंधन दलों के बीच प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में बार बार विचार विमर्श होने के बावजूद भी सहमति नहीं बन पाई थी। सत्तारूढ़ गठबंधन बीच सहमति न बनने के बाद माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पा कमल दहाल प्रचंड बालकोट पहुंचकर नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के साथ अपने नेतृत्व में नई सरकार गठन के लिए विचार विमर्श को आगे बढ़ाया, जिसके बाद नया गठबंधन बनाया गया। बता दें कि नई सरकार गठन के लिए राष्ट्रपति भंडारी ने 2 या 2 से अधिक दलों के समर्थन में प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने का आज शाम 5 बजे तक का समय तय किया था। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने शीतलहर और बर्फबारी के खतरे से बचने का अनुरोध किया है। मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉ समीर कुमार अधिकारी ने बताया कि अभी कुछ समय से ठंड के साथ साथ शीतलहर और बर्फबारी से लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा, इसलिए इससे सभी को बचना चाहिए। मंत्रालय ने ठंड से बचने व शरीर के सभी हिस्सों को ढकने के लिए मोटे कपड़े पहनने, कमरे को गर्म रखने और हवा के पर्याप्त संचार की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। बच्चों, ज्येष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं एवं पुराने रोगियों को शीतलहर एवं हिमपात से बचने का अनुरोध किया है। इसी तरह मंत्रालय ने बेडरूम में खिड़की और दरवाजे बंद करके आग, हीटर, कोयला, ब्रिगेड आदि रखकर न सोने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर आगाह करते हुए बूस्टर डोज वैक्सीन लेने का सभी से आग्रह किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ संजय कुमार ठाकुर ने कहा कि पड़ोसी देशों चीन और भारत में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसलिए सभी से बूस्टर डोज लगवाने का आग्रह किया गया है। इस बात का उल्लेख करते हुए कि पड़ोसी देशों में पाए गए कोरोना के नए वेरियंट BF7 के नेपाल में भी आने का जोखिम है, मंत्रालय ने सभी से आवश्यक सावधानी अपनाने का आग्रह किया है। हालांकि नेपाल में नया वेरिएंट BF7 अब तक नहीं पाया गया है। ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन पर आज ईसाई धर्मावलंबी क्रिसमस डे मना रहे हैं। आज से 2022 साल पहले दिसंबर 25 तारीख के दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म इसराइल के बेथलेहम में हुआ था। बता दें कि क्रिसमस के अवसर पर सरकार ने सार्वजनिक छुट्टी भी दी है। सरकारी वकीलों का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 15 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी करते हुए आज संपन्न हुआ। काठमांडू में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के घोषणा पत्र में अनुसंधान और अभियोजन, संहिता कानून के क्रियान्वयन में सुधार, अपराध का अनुसंधान वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित होकर करने लगा बातों पर जोर दिया गया है। काठमांडू उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमांडू के विभिन्न स्थानों में 10 उद्यान निर्माण की तैयारी में है। प्राधिकरण के सूचना अधिकारी एवं इंजीनियर सौरभ ढकाल ने बताया कि आपदा व्यवस्थापन और जलवायु अनुकूलन के लिए ये उद्यान बनाए जा रहे हैं। इसी तरह ललितपुर महानगर पालिका में 3 उद्यानों का निर्माण किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तरी अमेरिका में आर्कटिक तूफान की चपेट में आने से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 10 लाख लोग बिना बिजली के अंधेरे में गुजारा कर रहे हैं। भयंकर तूफान के कारण दृश्यता प्रभावित हुई है। तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं और बर्फबारी हो रही है। मौसम के बेहद खराब होने से आवागमन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ऐसे में क्रिसमस की छुट्टियों पर लोगों को अपने परिवारों के पास पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा के 2 सबसे बड़े शहरों टोरंटो मॉन्ट्रियल को जोड़ने वाला रेल संपर्क ट्रेन के पटरी से उतरने के चलते बाधित हो गया है। पाकिस्तान में सक्रिय चरमपंथी संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया है कि पिछले 2 दिनों में उसने बलूचिस्तान प्रांत में कई हमलों को अंजाम दिया है और इन हमलों में 6 सुरक्षाकर्मियों की जाने गई हैं। पाकिस्तानी सेना के मीडिया वीग ने आज इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान तालिबान के हमलों में कई लोग घायल भी हुए हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि संबाजा इलाके के झोब जिले में सुरक्षा बलों के साथ चरमपंथियों की मुठभेड़ में एक चरमपंथी और एक सैनिक की मौत हो गई है। सुरक्षा बलों ने उस इलाके में चरमपंथियों पर कार्रवाई के लिए अभियान चलाया था। बयान में कहा गया है कि सेना की कार्रवाई पुख्ता जानकारी के आधार पर की गई है और ये पिछले 96 घंटों से चल रही है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसकी कार्रवाई का मकसद चरमपंथियों को पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में दाखिल होने से रोकना था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ने नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड को किया प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त। प्रधानमंत्री प्रचण्ड को मिला 159 सांसदों का समर्थन। शीतलहर और बर्फबारी से बचने का सभी से स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने किया आग्रह। काठमांडू के विभिन्न स्थानों में 10 उद्यान निर्माण करने की काठमांडू उपत्यका विकास प्राधिकरण की तैयारी। और उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक तूफान की वजह से कम 20 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।